यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 मई सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम
नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। पातंजल योग दर्शन में योग का वर्णन आया है। योग शास्त्र है वो, बस योगानुशासनम, तो योग शास्त्र है, उसमें लिखा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना उसका नाम है योग। तो चित्त की वृत्तियां है ये निरुद्ध जा, चित्त की वृत्ति एक मूड वृत्ति होती है, एक क्षिप्त होती है, एक विक्षिप्त होती है, एक एकाग्र होती है, एक निरुद्ध होती है। मूड वृत्ति तो वो है जो समझता नहीं कुछ भी, जैसे पशु की तरह ही है, कोई बात कही जाए तो कोई अकल में नहीं आती बात, ऐसी मूड वृत्ति वाला योग का अधिकारी नहीं होता। क्षिप्त वृत्ति है वो कहते जो चंचल रहती है, दम कुछ न कुछ चंचलता ही रहती है, कभी स्थिरता होती नहीं, वो भी योग का अधिकारी नहीं होता। विक्षिप्त होते है, विच्छिद क्षिप्त, चंचल होती है, कुछ ठहरती है, फिर चंचल होती है, ऐसी वृत्ति वाला योग का अधिकार योग का अनुष्ठान कर सकता है। और एकाग्रता है वो सविकल्प समाधि होती है, और निरुद्ध है उसमें निर्विकल्प समाधि होती है, निर्विकल्प निर्वीर समाधि होती है, फिर कल्याण हो जाता है। तो चित्त की वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। गीता उसको भी योग कहती है, परंतु गीता का खास योग अपना है वो चित्त वृत्तियों निरोध नहीं है, वो है समत्वम योग उच्चते। गीता का सिद्धांत है समता। समता का मतलब न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न सुख में है, न दुख में है, इनसे ऊंची ऊर्जा साम्य अवस्था समता। दूसरा फिर किया दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है। तो दुख का संयोग है ये प्रकृति, प्रकृति के कार्य से जो संबंध है यह है दुखों का कारण, इनसे अलग हो जाए तब योग हो गया। तो दुखों से अलग हो जाना योग, और साम्यावस्था में से थोड़ा योग, साम्यावस्था में दुख का संयोग योग हो जाता है। साम्यावस्था परमात्मा का स्वरूप है, यही उत्तेजित सर्ग ये स्वयं साम्य सर्ग माना। जिन लोगों का साम्य अवस्था में मन स्थिर हो गया, उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। तो साम्य अवस्था है वो परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, तो मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। तो साम्यावस्था में स्थित होने से वे स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए, उसका नाम है योग। योग ये साम्य स्थित माना, तेरजित सर्ग ये मन साम्य वस्त है। उन लोगों ने यहाँ ही जीते हुए ही संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष अंग ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा है वो निर्दोष और सम है। जिसका मन निर्दोष और सम हो गया तो वे परमात्म तत्व में स्वरूप में स्थित हो गए। तो परमात्म तत्व में स्थिति का नाम हुआ असली योग। मन साम्यावस्था में कब स्थित होता है? जब वे स्वयं परमात्मा में स्थित होते हैं तब। तो स्वयं परमात्मा में स्थित होने से मन साम्यावस्था में स्थित होता है, और समता का नाम योग है। तो योग है वो परीक्षा है। जैसे इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, तो सूर्योदय होता है तो उसका घाम आता है, तो इधर पहाड़ पार होने से सूर्य में आ डाले सूर्य दिखता नहीं, पर तो सामने ऊंचा पहाड़ है उस पर उसका प्रकाश आ जाए, घाम आ जाए, आतप आ जाए, अपनी भाषा में तावड़ आ जाए, वो तावड़ आ जाए उससे हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। कि देखता है कैसे हमारे सूर्य नहीं दिखता, तो कैसे कह दिया कि सूर्योदय हो गया? कि देखो सामने वो ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर घाम आया है, आतप आ गया था, क्या तो सूर्य के बिना कहां से आया, तो सूर्योदय हो गया। तो जैसे पहाड़ पर घाम आने से हम सूर्य को न देख करके ही कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, ऐसे जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है, मन में कभी न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न संताप है न हलचल है, कुछ नहीं है, तो ये स्वरूप में स्थित परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। अगर वो स्वरूप में स्थित न होते तो साम्यावस्था में मन स्थित नहीं होता। मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, विषमता आती नहीं, तो वे परमात्मा में स्थित है। तो परमात्मा में स्थित होना है, योगी होना है, ये है गीता का योग। और पातंजलि महाराज का है कि जिसकी वृत्तियां में चंचलता न हो, निरुद्ध हो जाए, मूड क्षिप्तर विक्षिप्तर एकाग्र एकाग्र एक ही जगह जगह, उससे अपेक्षित निरुद्ध हो गया, रुक गया और बंद गया एकदम चित, तो उसका नाम है योग। तो चित्त एक जगह जम जाने से ये हुआ है कर्ण, कर्ण सापेक्ष हुआ ये, मन अंतकरण है ना, चित्त है वो भी कर्ण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्ण है। तो कर्ण एकाग्र होने से योग हुआ, और गीता का योग कर्ण की अपेक्षा नहीं रखता, वो तो कर्ण में साम्यावस्था स्थित हो गई। ये सांग साम्य स्थित मन, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तस्मात ब्रह्मणी ते स्थिता, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। तो ब्रह्म में स्थित हुआ ये हुआ योग। तो वहां ब्रह्म से वहां कर्ण नहीं है, वो कर्ण निरपेक्ष है, वो स्थिति स्वरूप में स्थिति है। कर्ण होता है प्रकृति का कार्य, तो कार्य में क्या हो, प्रकृति से अतीत है वो, प्रकृति का कार्य हुआ कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि हेतु, और वो प्रकृति से अतीत है। तो वो प्रकृति से अतीत में जो स्थिति है स्वयं की, तब उसका मन सम हो जाता है, ये उसकी परीक्षा है। मन की समता होना ये परीक्षा है, क्योंकि हमारे सामने तो मन के विकारी आते हैं, उनके स्वरूप में स्थिति उसमें तो कर्ण चलता नहीं, तो न अंतकरण से ज्ञान होता है न इंद्रियों से ज्ञान होता है वहाँ। तो अंतकरण है, इसमें बुद्धि है मन है चेतन अहंकार ये है, ये जब साम्यावस्था में सिद्ध हो गया, जिनकी हलचल नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, हर्ष शोक नहीं होता, मन ठीक शांत सम रहता है, तो सम रहता है इससे मालूम होता है कि वो परमात्मा स्वरूप में स्थित है। तो गीता का स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही योग है। समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है। इधर प्रकृति प्रकृति कार्य है, इसके साथ संबंध होने से दुख होता है, तो दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होता वहाँ, उसका सर्वथा वियोग, मानो प्रकृति प्रकृति कार्य से सर्वथा वियोग हो जाए तब वो योग होता है। तो प्रकृति और प्रकृति कार्य से वियोग हो जाए अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाए, दोनों का नाम योग कहा। तो जड़ता से रहित होने का नाम योग और चेतनता में स्थिति होने का नाम योग। तो दो बार परिभाषा करी, तत्व एक ही आया, दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। तो ये गीता का योग है। तो गीता के योग में मन अंतःकरण आदि सब के संबंध विच्छेद है, विच्छेद होने से वो कर्ण निरपेक्ष है तत्व, उसमें कर्ण है ही नहीं। और ये योग दर्शन है, ये कर्ण सापेक्ष है, मानो चित्त अंतःकरण स्थिर होगा एकदम। तो अंतःकरण स्थिर होने से क्या होगा, तो योग में लिखा है तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, चित्त की वृत्तियां एकाग्र हो जाएगी, निरुद्ध हो जाएगी, तो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होगी, ये उसका फल होगा, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति। और यहाँ पहचान हुई कि साम्य अवस्था में मन स्थित हो गया, तो उसकी पहचान ही हुई परमात्मा में स्थित है। इसमें चित्त एकाग्र होने से, चित्त निरुद्ध होने से उसका फल होगा परमात्मा स्वरूप की स्थिति। और यहाँ चित्त में समता आ जाने से उसकी पहचान होगी कि साम्यावस्था में स्थित है। फर्क क्या आया, फर्क साम्यावस्था में मन स्थित हुआ इसका नाम योग होने से इसका नतीजा फल परिणाम परमात्मा प्राप्ति है। और यहाँ साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो प्राप्त हो चुके, अब उसे कोई बाकी कुछ भी नहीं रहा है। तो ये हुआ कर्म सापेक्ष, और वो हुआ कर्म निरपेक्ष तत्व। तो तत्व कर्म निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष का वास्तव में जो परमात्मा स्वरूप में स्थित है वो कर्म निरपेक्ष है। वो भले पाचंद्र योग के दर्शन अनुसार हो, चाहे परमात्मा योग गीता के अनुसार हो, परमात्मा स्वरूप है वो कर्ण निरपेक्ष है। तो कर्ण निरपेक्ष सिद्धि अवस्था हुई, कर्ण निरपेक्ष साधन अवस्था तो नहीं हुई। तो साधन कैसे होगा कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष साधन तो कर्ण सापेक्ष होगा। तो कर्ण सापेक्ष होने से अंतःकरण को एकाग्रत करना पड़ेगा, तो वो सनई सनई रूप में न किंचित है, ये उसका साधन हुआ। और यह न किंचित चिंतन है, ये सिद्धि हुई योग की, और ये साधन हुआ गीता के अनुसार साधन का। दुख संयोग वियोग हुआ, तो चिंतन कुछ भी न करे, उसका है चिंतन करे, तो इसका योग का वर्णन भी गीता में आया है। वो आया है कि छठे अध्याय 18वां श्लोक, इधर विनियतम चित्तम, विनियत प्रश्न की बात चित्त है, आत्मनिवावतिष्ठ से एक आत्मा में स्थित स्थित है और
निष्प्रिय सर्व कामेषु,
सब कामों में निष्प्रिय हो जाए, तब वो होती स्थिति। तब युक्त कहा जाता है, योगी कहा जाता है वो। अच्छा योगी कहा जाता है तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही रहे और निष्प्रिय सब काम, सब कामना में बढ़िया, सब कोई कामना नहीं, किसी तरह की इच्छा न भोग की है न मोक्ष की है, कोई कामना नहीं है, तब वो योग हुआ। तो क्या श्लोक है,
यथा दीपो निवातस्तु,
तो कैसे बताएगी, यथा दीपो निवातस्तु नेंगते, निवात देश में रखा हुआ दीपक ऐसे लो होती है, तो ऐसे उल्टी डुलती नहीं, इतनी बार लो इतनी सूक्ष्म होती है, थोड़ा भी हवा होगी तो ऐसे ऐसे हिलेगी, थोड़ा भी जिसका पता नहीं लगता कि वो भी लो भी हिलती है, सब बात रही तो दीपक होगा तो उसमें लो एकदम रहेगी, ऐसा जिसका चित्त हो जाए, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, निष्प्रिय सर्व काम संपूर्ण कामनाओं से रहित होगा, तब युक्त तुझे आत्मना योगम युंजता सता, युंज अपना योग करते 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 ऐसा चित्त हो जाता है, यत्र उपरमते चित्तम, अब सबसे निष्प्रिय हुआ यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग से, निरुद्ध हुई एकाग्र वृत्ति पहले हो गई अब निरुद्ध हुआ, तो यत्रोपरमते चित्तम, भीष्म श्लोक है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा से चित्त सबसे उपराम हो जाता है सर्वथा संसार से, मन पहले स्प्रिया गई कामना गई, इस कोई तरी कामना नहीं, अब निष्प्रिय सर्व कामे योग, तब युक्त कहा जाता है, अब वो निरुद्ध उपरम से उपराम हो जाए, वो त्याग और ग्रहण दोनों में कुछ संबंध होता है, अब त्याग का ग्रहण का कोई संबंध नहीं, उपराम हो गया, उपरम ही उपरत हो गया, आत्मना आत्मान जिसमें अपने से अपने आप का चिंतन होता है, केवल अपने आप के आप में आत्मने अपने आत्मन स्थिति है, तो पश्चिम आत्मनि तुष्यति, अपने स्वरूप में ही तुष्ट है, तम विद्या दुख संयोग यम लब्धवाचा परम लाभ, हमने वो लाभ के प्राप्त में फिर उससे लाभ कोई बढ़कर नहीं है, और बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, उसको तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग, उसका नाम योग है, तो यह योग चित्त वृत्ति निरोध का नाम नहीं हुआ, निरोध का फल हुआ, निरुद्ध हो गया दीपक की तरह, ऐसा हो जाने के बाद में वो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगे तुम, उसका नाम योग हुआ, तो संसार से सर्वथा प्रकृति प्रकृतिकारी से सदा संबंध विच्छेद होने से योग हुआ, और यहाँ वृत्तियों का निरोध होने से योग हुआ, तो निरोध होने से अंतकरण का साथ है, और उस योग में अंतकरण का साथ नहीं है, तो निरकरण निरपेक्ष हुआ, तो निरपेक्ष कैसे हो, कभी हमारे साथ संबंध संसार का नहीं है, इस तरह का जो विचार है विवेक ये है निरकरण निरपेक्ष साधन, और मन को लगाना परमात्मा में ये कर्म सापेक्ष, और मन लगाना नहीं मेरे साथ संसार संबंध है ही नहीं, ऐसे चुप होने का ना हुआ साधन, तो कर्म सापेक्ष साधन हुआ है, और कर्म निरपेक्ष के हमारे साथ कर्ण का संबंध अंतकरण का संबंध है ही नहीं, स्वरूप है उसमें अंतकरण नहीं है, कर्ण कोई नहीं है, क्रिया भी नहीं है, कर्ता भी नहीं है, तो कर्ण कहाँ रहे, कर्तृत्व तो नहीं है, प्रकृति एवं कर्माणी क्रियमाणानी, ये प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म होते हैं, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे ही, प्रकृति के गुणों का जो अकर्ता है, नान्य गुणे भी अकर्ता, गुणों के सिवाय कर्ता है ही नहीं, तो कर्तृत्व भी नहीं है, तो कर्ण कैसे होगा, क्रिया है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर रही थे। तो ऐसा होकर स्थित होना है, ये कर्ण निरपेक्ष साधन हुआ, मन लगा रहा नहीं किंतु मन से संबंध विच्छेद कर देना अपना। मन हमारा नहीं, मन प्रकृति का है, तो मन अपना नहीं तो क्या कर, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। शरीर का मेरे साथ कोई संबंध हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे होकर चुप हो जाने का नाम योग हुआ। तो अपने साथ संबंध विच्छेद हुआ तो ये कर्म निरपेक्ष साधन हुआ। और मन लगाने का जो उद्योग है ये कर्ण सापेक्ष हुआ। तो कर्ण सापेक्ष की अपेक्षा कर्ण निरपेक्ष साधन ऊंचा है, उस साधन से साक्षात प्राप्ति है। और कर्ण सापेक्ष होने से निरुद्ध होगा, निरुद्ध के बाद में स्वरूप स्थिति होगी। और स्वरूप में स्थिति नहीं होगी तब सिद्धियां पैदा होगी। तो योग दर्शन का जो विभूति पाद है जिसमें सिद्धियों का वर्णन है, वहाँ पर 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो 8 अंगों में ये 5 अंग तो आ गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि, ये विभूति पाद में आया। 8 अंगों का वर्णन साधन पाद में आया और 3 अंगों का वर्णन आया विभूति पद में। त्रय में एकत्र संयम धारणा ध्यान समाधि, तीनों का नाम है संयम। अब सूर्य में संयम किया जाए, सूर्य में समाधि लगा जाए, धारणा ध्यान समाधि लगा जाए, भुवन कोश ज्ञानम, संसार के कोश कितना कहाँ कहाँ क्या है ज्ञान हो जाएगा। मानो सूर्य में समाधि लगने से सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ पड़ता है उसे ज्ञान हो जाएगा। और चंद्रमा में वो मन लगा धारणा ध्यान समाधि लगाई जाए, समाधि वो वैसे कर दी जाए, तारा व्यू ज्ञान, तारा व्यू ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही वो मन कंठ कूप है, ये भीतर में जो एक कागो लिया है ना, ये कंठ में लटकता हुआ छोटा सा भी अर्दी के दिन लटका दी है, उस कागोली के पीछे इतना खड़ा है इतना, उसका नाम कंठ कूप है। ऐसे कर देखा जाए तो देखा हुआ होगा आपका, अंगूठा जाता है इतना सा, यो
ऊपर की तरफ।
तो वो ऊर्ध्वमुख बनाता है ना, वो ही कुआ है। वो नीचे का मुख है कुआ, कुएं का तो ऊपर का मुख होता है, इसका ऊंचा नीचे की तरफ मुख है। तो ये मुख होने से क्या होता है, ऊपर से जो अमृत जलता है वो नीचे जा करके, और नागनी जो होती है जिसको क्या कुंडलनी, भूल जाता हूँ भाई, वो कुंडलनी नाड़ी है, 2.5 आंटा लगाकर नाभि बैठी है, वो कुंडलनी नाड़ी उस अमृत को पीती है। और यहाँ से जीव लेटा करके और उस कुंड कूप में डाल दी जाए तो फिर वो अमृत पीता है जोगी, तो अमृत फिर कुंडले जागृत हो जाती है, नहीं तो सोई हो जाती है, वो पीती है जागृत हो जाती है तब उसमें, वहां पीता है तो अमृत पीता है। अमर झरे अमी झरे ऐसा कभी शब्द पद आता है, कंठ कूप में अमी झरे मारो मेरो हंस लो केल करे, कंठ कूप में अमर झरे ऐसा कुछ पद है कबीर जी महाराज का, वहां पर हंस लो केल करे, वहां अपने खुशी रहता है प्रसन्न वो अमृत पीता है। तो वह है योग, तो वो योग करके करता है तो वह लगा करके अमृत पीता तब होता है। तो इसकी जड़ का संबंध अभी तक विच्छेद नहीं हुआ है, जीव का संबंध है, कंठ कूप का संबंध है, ऊपर से अमृत टपकता है उसका संबंध है, और नागनी है उसका जागृत करना उसका संबंध है। ये संबंध रहते हुए वो होता है, उसमें अमृत पीता है योगी, वो अमर हो जाता है, ऐसा है। तो उसमें काय संपत्ति कहा है, इसमें पासंद योग दर्शन में एक काय संपत्ति और शरीर की संपत्ति है। तो कब कैसे होती है वो संपत्ति कि जैसे पहले कई जन्म में हम कहीं गए, कड़ी कीड़ी बने, कभी हाथी बने, कभी मृग बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी वृक्ष बने। इन संस्कारों में संयम करने से संस्कारों में ज्ञान होता है जन्मों का। उस ज्ञान में हाथी का जन्म आया है, उसमें अगर संयम कर रहे हम, वो संस्कार है भीतर, उसमें संयम कर गया तो काया में बलेश हस्ती बला दी नहीं, हाथी का बल आ जाएगा उसमें। हाथी का मयू कर दो, हाथी जैसे कर देता वैसे हो जाता शरीर से, क्योंकि उसका संयम अभी हाथी के बल में है। तो हस्ती बला दी नहीं वो हो जाएगा। तो जहाँ संयम करते वो शक्ति इसमें आ जाएगी। तो ये विभूतियाँ तरह तरह की जड़िमा महिमा गर्मा आदि के ये सब विभूतियाँ पैदा होती, तरह तरह की बात है। किन्हीं बोटा बेटा दे दिया, किन्हीं कुछ कर दिया, किन्हीं कुछ कर दियो, ऐसी विभूतियाँ आ जाती है। वहाँ विभूतियों में अगर लग गया पुनर अनिष्ट प्रसंगात, फिर संसार में जन्म मरण होगा। तो निरुद्ध चित्त तक जन्म मरण होते हैं। तो ये कर्म सापेक्ष में जन्म मरण सहित होते हैं, जन्म मरण रहे थे। इन विभूतियों से सर्वथा विरोग होता, विराग होता है, तब वो परमात्मा तत्व प्राप्त होता है। और गीता का सीधा ही संबंध विच्छेद कर दिया, साम्य स्थित मना तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, वे ब्रह्म में स्थित हुए। तो वो स्थिति कर्ण निरपेक्ष है। तो कर्ण निरपेक्ष कैसे करे कि इंद्रियों का अंतःकरण का अपने स्वरूप के साथ संबंध नहीं है ऐसा माने, ऐसी मान्यता में बुद्धि है।
बुद्धि है
हाँ, कर्ण का संबंध है, बुद्धि का संबंध है, परंतु बुद्धि का संबंध रहते हुए नहीं पड़ा साथ में है, ये कर्ण निरपेक्ष है। वो सिद्धि में कर्ण निरपेक्ष को मानते ही सभी सिद्धि हो जाएगी। और इस बुद्धि की आवश्यकता है एकाग्रता के लिए, तब है कर्म सापेक्ष। ये कर्म सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन है।
बुद्धि का अभाव मान रहे हैं
हाँ,
तो भी प्रारंभ में बुद्धि के द्वारा उसको
बुद्धि के द्वारा होता है
मानते हैं
बिल्कुल,
परंतु फिर भी उसका जो अभाव देख लिया है वो अभाव है, वो कर्ण निरपेक्ष,
वो निरपेक्ष है। तो उद्देश्य कर्ण निरपेक्ष होता है। पहले साधन कोई करो, साधन करना है, करना है साधन, करना करना कर्म सापेक्ष ही होगा, कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा। परंतु उद्देश्य कर्ण निरपेक्ष है, इस बात बुद्धि का संबंध रहते हुए भी वहाँ टिकेगा नहीं, ये साम्यावस्था में मन नहीं टिकेगा, किंतु वो निर्विकल्प होकर के और वो स्वरूप में स्थिति होगी सीधी। तो ये कर्ण निरपेक्ष साधन है और कर्ण निरपेक्ष साध्य है। और कर्ण सापेक्ष होने पर भी जब निरुद्ध हो जाएगा चित्त, तो फिर ये स्थितियां आदि को सबसे विरक्त हो जाएगा, इनसे ऊपर होना हो जाएगा, तब उसमें स्थिति होगी। अगर इसमें अगर राग रहेगा तो स्थिति नहीं होगी। ये कर्म सापेक्ष साधन है और वो कर्म निरपेक्ष है, ये भेद है इसका।
ज्यादा खतरा तो कर्ण सापेक्ष में
हुआ, सापेक्ष में, सापेक्ष में हुआ। इस बात से गीता ने कर्ण सापेक्ष रखा ही नहीं, ये छठे अध्याय में कर्ण सापेक्ष आपको बताया। हिदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामे युक्तिते तदा। ये कर्मयोग में नहीं है, कर्मयोग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट सिद्ध प्रज्ञ सिद्ध प्रज्ञ होगा।
महाराज इत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्टति
है। हाँ, तो स्वरूप है वहाँ,
तो वो भी तो वो वहाँ कर्ण निरपेक्षता ही तो आएगी।
कर्ण निरपेक्ष
चित्त तो निरुद्ध हो गया, कर्म तो वहाँ निरुद्ध हो गया, और फिर वो जो वहाँ जो पश्चन हो रहा है वो अपने आप का अपने आप को, तो वो तो कर्ण निरपेक्ष ही,
बिल्कुल कर्ण निरपेक्ष। वो कर्ण निरपेक्ष इस बात उसके संत बताया, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। वो कर्ण निरपेक्ष की बात, जब क्या हुआ दुख संयोग का वियोग हो गया सर्वथा, तो कर्ण निरपेक्ष हो गया। तो कर्ण निरपेक्ष ही होगा वहाँ, पर कर्म निरपेक्ष वो कर्ण के द्वारा हुआ ना, सनेह सनेह ऊपर में आगारी आगारी बताया तो निरपेक्ष बताया। और ये विनियतम चित्तम आत्मनीय होते, यहाँ चित्त है वो हिला विनियतम चित्तम आत्मनीय होते। और वहाँ पर प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनीय, वो मन को तो आत्म नहीं, ये बात मन अपने आप नहीं, अपने आप में स्थित है। तब वो स्थित प्रज्ञ हो गया, तो स्थित प्रज्ञ हो जाना, योगी हो जाना, एक ही बात हुई। वो योग है तो वो कर्ण निरपेक्ष, स्थित कर्ण निरपेक्ष है। वास्तव में कर्ण साथ में रहेगा ही, पर कर्ण के साथ में रहते हुए भी कर्ण के द्वारा चीज ग्राह्य नहीं है, ये निश्चय पहले रहता है। इस वास्ते उसको हम कर्ण निरपेक्ष साधन कहते हैं। कर्ण निरपेक्ष कैसे, कर्ण तो रहता है, पर कर्ण में निरपेक्ष